लुका अध्याय 11। किसी जगह पर यीशु के प्रार्थना करने के बाद शिष्यों में से एक ने उनसे कहा,
हे स्वामी, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखलाया था, वैसे ही हमें भी सिखा दीजिए।
यीशु ने उनसे कहा,
जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिताजी, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, हमारा रोज का खाना हमें रोज दिया जाए, हमारे अपराधों को माफ करें, क्योंकि हम भी उन सभी को माफ करते हैं जो हमें चोट और नुकसान पहुंचाते हैं, हमें प्रलोभन में फंसने ना दें।
तब यीशु ने उनसे कहा,
तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे दोस्त, मुझे 3 रोटियां चाहिए, क्योंकि एक मुसाफिर दोस्त मेरे पास आया है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वो अंदर ही से कहे, मुझे परेशान मत करो, दरवाजा बंद है और मेरे बच्चे मेरे पास बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि हालांकि दोस्त होने के नाते वो ना भी उठे और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके गिड़गिड़ाने की वजह से वो उतनी जरूर देगा जितनी जरूरत होगी। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, चाहत रखो तो पा जाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पा लेता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? इसलिए जब तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारे आसमानी पिता उनको जो मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे?
फिर यीशु एक गुंगी आत्मा को निकालने लगे। जब वह आत्मा निकल गई तो व्यक्ति बोलने लगा, जिससे भीड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीड़ में से कुछ लोग कह उठे,
यीशु अशुद्ध आत्माओं को बालजबुल की मदद से निकालते हैं।
दूसरे कुछ लोगों ने उन्हें परखने के लिए आसमान से एक निशान मांगा। उनके मनों और विचारों को जानकर यीशु ने कहा,
जिस राज्य में एकता ना हो वो उजड़ जाता है, और जिस घर में एकता ना हो वो नाश हो जाता है। अगर शैतान ही खुद अपनी खिलाफत करने लगे तो उसका राज्य कैसे बना रह सकता है? क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा ये इल्जाम है कि मैं बालजबूल की मदद से अशुद्ध आत्माओं को निकालता हूँ। यदि मैं बालजबूल की मदद से अशुद्ध आत्माएं निकालता हूँ, तो तुम्हारे लोग किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वे ही अपना मत दें। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की मदद से भूत प्रेत निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब एक ताकतवर इंसान पूरी तरह हथियार लेकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन दौलत सुरक्षित रहती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई इंसान उस पर हमला बोलकर उसे हराता है तो वो उसके सभी हथियारों को, जिन पर उसे भरोसा था, छीनता है और धन दौलत को लूटकर बांट देता है। वो जो मेरे साथ नहीं मेरे खिलाफ में है, और वो जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी इंसान में से निकलती है तो आराम की जगह खोजते हुए बिना पानी की जगहों से होकर निकलती है। जब उसे कोई जगह नहीं मिलती तो कहती है, मैं अपने जिस घर से निकली थी उसी में लौट जाऊंगी। जब वो वहां पहुंचती है तो उस जगह को साफ सुथरा सजा सजाया पाती है। तब वो अपने से अधिक बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ लाकर उसमें समा जाती है, और उस इंसान की हालत पिछली हालत से और ज्यादा बुरी हो जाती है।
जब यीशु ये बातें कह ही रहे थे तो भीड़ में से किसी महिला ने ऊंची आवाज से यीशु से कहा,
आशीषित है वह गर्भ जिसमें आप रहे और वे छातियां जिनसे आपका पोषण हुआ।
लेकिन यीशु ने कहा,
सच पूछो तो धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर का संदेश सुनते और उसको मानते हैं।
जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, यीशु ने कहना जारी रखा।
ये दुष्ट पीढ़ी है क्योंकि ये कुछ निशान चाहती है, लेकिन योना के निशान के अलावा उन्हें और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से योना नीनवे के लोगों के लिए निशान बना, उसी तरह से मैं भी इस पीढ़ी के लोगों के लिए बनूंगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़ी होकर उन पर दोष लगाएगी, क्योंकि वो दुनिया के छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने को आई थी, लेकिन देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होकर इन पर दोष लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रवचन को सुनकर मन बदला, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बढ़कर है। कोई भी व्यक्ति दीपक जलाकर ना ही तहखाने और ना टोकरी के नीचे रखता है, लेकिन उसे दीपदान पर रखता है कि अंदर आने वाले को रोशनी मिले। तुम्हारी देह का दीपक तुम्हारी आंख है। जब तुम्हारी आंख निर्मल है तो सारी देह भी रोशनी से जगमगा उठेगी, लेकिन जब वो बुरी है तो तुम्हारी देह पूरी तरह से अंधकारमय हो जाएगी। इसलिए सावधान रहना कि तुम्हारी रोशनी अंधेरे में ना बदल जाए। इसलिए यदि तुम्हारी सारी देह जगमगाती हो और किसी भी हिस्से में अंधेरा ना हो, तो वो पूरी तरह ऐसा रोशन होगा जिस तरह दीपक अपनी चमक से तुम्हें रोशनी देता है।
जब यीशु ने बोलना खत्म किया तो एक फरीसी ने उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए नेवता दिया। वे भीतर जाकर खाना खाने बैठ भी गए। फरीसी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यीशु रीति रिवाज के मुताबिक खाना खाने से पहले नहाए नहीं। लेकिन यीशु ने उससे कहा,
हे फरीसियो, तुम कटोरे और थाली को बाहर से मांजते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अंधियारा और दुष्टता है। हे बेवकूफो, जिसने बाहर के हिस्से को बनाया, क्या उसने भीतर के हिस्से को भी नहीं बनाया? लेकिन जो भीतर का है उसे दान में दे दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हे फरीसियो, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का तथा अलग अलग तरह की साग सब्जियों का दसवां हिस्सा तो दे देते हो, लेकिन इंसाफ और परमेश्वर के प्रेम को अनदेखा करते हो। यही वे बातें हैं जिन्हें तुम्हें दूसरी बातों को छोड़े बिना करनी चाहिए थी। हे फरीसियो, तुम पर हाय, क्योंकि तुम आराधनालयों में आगे की जगह और बाजारों में नमस्कार की आस लगाए रहते हो। तुम पर हाय, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों की तरह हो जिन पर लोग बिना जाने बूझे चलते फिरते हैं।
तब यहूदी धर्म के एक ज्ञाता ने उत्तर दिया,
हे गुरुजी, ऐसा कहकर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं।
लेकिन यीशु ने कहा,
तुम ज्ञानियों पर भी हाय, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे बोझ से दबाते हो जिन्हें उठाना मुश्किल है, लेकिन तुम खुद उन बोझों को एक उंगली से भी छूना नहीं चाहते। तुम पर हाय, क्योंकि तुम उन नबियों की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही पुरखों ने मार डाला था। इसलिए तुम ही गवाह हो और अपने पुरखों के कामों में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला था और तुमने उनकी कब्रें बनाई। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगी, उनमें से कुछ को वे मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, जिससे कि सृष्टि की शुरुआत से जितने नबियों का खून बहाया गया है उसका हिसाब इस पीढ़ी के लोगों से लिया जाएगा, अर्थात हाबिल के खून से लेकर जकरिया के खून तक का हिसाब, जिसकी हत्या परमेश्वर के भवन और वेदी के बीच में की गई थी। हाँ, मेरा कहना है कि इस पीढ़ी के लोगों से हिसाब मांगा जाएगा। हे शास्त्रियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुमने ज्ञान की चाबी छीन ली है। तुम तो खुद दाखिल नहीं हुए और जो दाखिल हो रहे थे उन्हें भी रोका।
जब वे वहां से चले गए तो शास्त्री और फरीसी सख्त खिलाफत करते हुए बहुत से विषयों पर यीशु से बारीकी से सवाल करने लगे और यीशु के विरोध में योजना बनाने लगे, ताकि उनके मुंह की किसी बात से उन्हें फंसाएं।